परम पूज्य 108 श्री माता का जी महाराज के चरणों में नमोस्तु के साथ आप सब उपस्थित महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम आज की ग्रामसभा मेरी व्यवस्था के कुछ पंक्तियों से प्रारंभ करेंगे। तत्पश्चात मुनिवर के साहु संकल मंगल में प्रवचन होंगे।
जिस समय राजदेश कामादिक जीते सब जग जान लिया सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रभोपदेश दिया बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो भक्ति भाव से प्रेरित हो यह उसी में लीन रहो विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को भरते हैं रहे सदा सत्संग उन्हीं का ज्ञान उन्हीं का नित्य रहे उन्हीं जैसी चरिया में यद चित सदा गलुरत रहे।
आपने परम पूज्य 108 श्री माता रानी महाराज के चरणों में नमोस्तु के साथ सर्वत्र प्रार्थना करता हूँ कि सावधान पर अपने मंगल में सार कर तो वचन से हम सबको कृपा करें। परम पूज्य 108 श्री माता रानी
नमोस्तु पूर्वानेक्षी स्वाध्याय विलयम श्री शुद्धभक्ति के आयु सुखम करो।
संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम् अज्ञान्तिमरान् ध्यानान् ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलश विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकरंडक श्रावकाचारणामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारणासाध्य श्रीमत् समंत भद्राचार्य देवैर्विरचितम् मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षणान्यशीतिस्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टो च सहस्रसंख्या नीतश्रुतं पञ्चपदं नमामि अरिहंतभासियत्थं गणहरदेवी गंत्यं सन्नम प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमगो वयं सिरसा इच्छामि भन्ते सुदभक्ति का उसको को तो सालोचिं अंगोंग पहिने पाहुने प्रियं निसुत पणिमाणि गुगे चूलिया चेई सुतथयथुदम कायम सामि चुकालमुंचिमि पूजिमि वंदामि नमंसामि दुख को कम को वैलाओ सुगैगुणम समाय मन्नम जिनगुण संपत्ति को मच्छम नमोस्तु पूर्वानेक्षी साध्य विलायम श्री आचार्य भक्ति का सुगम करो
स्वपर्वत विभावना पटुतीभ्या सुचरितपूर्णदीभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्या छत्तीसगुण सन्मग्गे पंचविहाचारकरण सन्दर्शे शिष्यानुगे कुशले धन्नायरि सदा वंदे गुरुभक्ति संयमे नया तरंति संसार सायरं घोरं श्रीमंति अठिकन्मता जीमुक्तिमंत्रोमता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधुनिधुना साधुक्रिया साधुवा शील प्रहुरणा गुण प्रहुरणाश्चंद्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटन भटा प्रीणन्तु मां साधुवा गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शन नायकाः चारितारणा गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छायवंते आर्यभक्ति कांसको को दशालोचन समनानुसंदेशन संकीर्तितानं पंचविहाचारणं आर्यानं आराधिसुनानं देशानं उच्चायानं तिरणं पालनानं सबसाहुनं सानि चकालनं समि पूजिनि वंदानं सानि दुःखो को कमको वैला सुबेगुणं सनायुनं जिनुं संपत्ति को मच्छं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते बोले भगवान महावीर स्वामी की आचार्य कुंदकुंद स्वामी की आचार्य समंत भद्र स्वामी की आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज ये रत्नकरण रक्षाभुकाचार आचार्य समंत भद्र स्वामी का अपन पढ़ रहे हैं। धर्म दर्शन और अध्यात्म ये तीन चीजें हमेशा सुनने में आती हैं, क्या इनके अलग अलग अर्थ हैं या कि ये सब चीजें एक ही हैं, इस पर अपने को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। धर्म में आचरण पक्ष की मुख्यता रहती है और दर्शन में विचार पक्ष की मुख्यता रहती है। कोई भी धर्म जिसका आचरण दर्शन से समन्वित नहीं है वो धर्म ज्यादा दिन नहीं टिकता, और जिस धर्म के पास आत्मा परमात्मा पुनर्जन्म इन सब के बारे में कोई ना कोई विचार होता है फिर वो अपने आचरण की प्रक्रिया देता है तो ऐसा धर्म हमेशा टिकता है। और अध्यात्म बिल्कुल अलग क्षेत्र है, वो अनुभूतियों का क्षेत्र है, वहां पर आचरण और विचार दोनों समन्वित होकर जो हम अनुभव करते हैं वो अध्यात्म का क्षेत्र है। अध्यात्म का क्षेत्र अकेले विचार का क्षेत्र नहीं है या कि आचरण के निषेध का क्षेत्र नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि अध्यात्म के मायने ये है कि जहां आचरण वाचरण कुछ नहीं करना है, वह सिर्फ विचार करना है, विचार कर लेना है कि आत्मा अलग है और आत्मा का अपना स्वरूप है और जो पुद्गल है या कर्म है वो उससे बिल्कुल अलग है। ऐसा सिर्फ विचार कर लेना ये तो दर्शन का काम है, ये तो फिलॉसफी है, फलसफा। हर धर्म का अपना एक फलसफा है, वो हर चीज के बारे में सोचता है। आत्मा और आत्मा के विकास के बारे में जो भी विचार जैनेन्द्र भगवान ने दिए हैं वो सब जैन दर्शन कहलाता है, और उस आत्मा की प्राप्ति के लिए जो भी उपाय कहे गए हैं वो सब जैन धर्म है। और इस बीच जब हम विचार और आचरण दोनों को समर्पित करके उस वास्तविक स्वरूप का जो अनुभव करते हैं, वत्थु स्वभावो धम्मो, वह जो धर्म जो आत्म स्वभाव की प्राप्ति का नाम है, वो है जैनाध्यात। इतना तीनों में अपने को एक समझना चाहिए, एक जैन धर्म में पैदा होने के नाते कि आखिर जैन धर्म क्या है, जैन दर्शन क्या है और जैन अध्यात्म क्या चीज है। अब हम ये सोचें कि एक श्रावक और एक साधु, दोनों के पास अपना एक आचरण है और अपने विचार हैं, पर अनुभूति सबकी अपनी अपनी है। और इसी वजह से हर आचार्यों को ये लिखना पड़ा कि मैं अपनी अनुभूति से जो चीजें बताता हूं उन्हें तुम अपनी अनुभूति की कसौटी पर कस करके देख लेना और फिर उसके बाद ही प्रमाणीभूत मानना, फिर प्रामाणिक मानना। तो हम लोगों ने इस बात का भी बड़ा प्यारा अर्थ लिया और हमने कहा ठीक तो है, हम अपनी अनुभूति से परख के देखेंगे, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हम कहां बैठे हुए हैं और वे अनुभव कर रहे हैं किस स्थिति में पहुंच करके। क्या हम उनकी अनुभूति से अपनी अनुभूति को टैली कर सकते हैं? दो लोग एक समान स्तर पर खड़े हों तब तो दोनों की अनुभूति एक होने की संभावना है, वरना कोई जरूरी नहीं है कि दो लोग एक समान स्तर पर, दो साधु भी क्यों ना हो, दोनों की अनुभूति एक जैसी नहीं हो सकती। असंख्यात लब्धि स्थान बनते हैं, चौरस शुद्धि स्थान बनते हैं, एक ही गुण स्थान में रहने वाले नाना जीवों के परिणामों में तरतमता रहती रहती है, अनुभूति सबकी अलग अलग रहेगी। पर इसके बावजूद भी आज हमें ऐसा लगता है कि नहीं, जो कुंकुम स्वामी ने कहा वो हम यहीं बैठे बैठे और अनुभव कर लेंगे, वैसा अनुभव तो ना हो पाएगा जिस अनुभव करके उन्होंने लिखा है। पर उन्होंने हमें रास्ता दिया है, वहां तक पहुंचे हम, कुंकुम स्वामी तक पहुंच करके फिर हम कुंकुम स्वामी ने जैसा अनुभव किया वो कर पाएंगे। भगवान महावीर स्वामी ने जो अनुभव किया है, क्या वो हम ऐसे घर बैठ के अनुभव कर सकते हैं? अगर कर सकते होते तब तो फिर बहुत आसान रास्ता था, इतनी कठिनाई होती नहीं। अगर कठिनाई कहीं है तो वो यही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो चीज जहां पहुंच के अनुभव की जानी थी वो हमने वहां पहुंच के अनुभव ना करके और नीची अवस्थाएं बैठ करके ही अनुभव करना चाहा है, इसलिए दुविधा में है। और कोई भी चीज हमारे हाथ आती नहीं लगती, इतना सब करने के बाद हमारे पास बढ़िया विचार है, हमारे पास आचरण है, लेकिन आचरण और विचार इन दोनों का समन्वय नहीं है। इन दोनों के बीच बहुत फर्क हो गया है। आचरण कहीं कुछ करते हैं, विचार किसी और भी हो सकते हैं। एक कल मैं आपके सूक्तियों का, इंग्लिश की सूक्तियां पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने ये कोट किया, जबकि उनको अध्यात्म अध्यात्म का कोई ज्यादा ज्ञान नहीं होता अपन ये मान के चले, पर वो व्यक्ति भी वही चीज सोच रहा है कि मैं ये नहीं देखूंगा कि आपके पास कितने अच्छे विचार हैं, इससे आपके बारे में नहीं मालूम पड़ेगा, आपका आचरण कैसा है इससे आपके बारे में मालूम पड़ेगा। विचार आपके पास बहुत अच्छे किस्म के हो सकते हैं, लेकिन आपका आचरण घटिया किस्म का हो सकता है। आपका आचरण अगर अच्छे किस्म का है तो आपके पास विचार भी अच्छे होंगे, ये तय है, क्योंकि सारे विचार जो निकले हैं वो अच्छे आचरण से ही निकले हैं। पूरा जैन दर्शन अगर है या कि जैन धर्म है, दोनों अनुभूति से निकले हुए हैं। किसी ने ऐसे आज के विज्ञान की तरह कैलकुलेट करके नहीं दिया है कोई भी चीज। जो अनुभव किया है तीर्थंकरों ने, सर्वज्ञ भगवान ने, तब तक तो वो बोले नहीं जब तक उन्होंने पूरा अनुभव नहीं कर लिया। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक बोले नहीं वो, और केवल ज्ञान के नीचे जो भी बोलेगा उसकी बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। हाँ, केवली भगवान ने जो कहा उस बात को कोई भी बोल दो उस पर विश्वास कर लेंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई बात करूं तो उस पर कोई विश्वास नहीं करने वाला, और ना करना। वक्तु प्रामाण्यत वचन प्रामाण्यम, वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता है। हमारे वास्तविक वक्ता है सर्वज्ञ भगवान, या कि गणधर, या कि परंपरा से जो आचार्य हैं वे उसके वास्तविक वक्ता हैं। उनकी बात को अगर हम इंटरप्रिट करते हैं तो ठीक है। इसके मायने क्या हुआ कि पूरा का पूरा धर्म अनुभूति पर टिका हुआ धर्म है। सिर्फ विचार नहीं है, सिर्फ आचरण नहीं है, एक ऐसा आचरण जिसके साथ विचार भी है। और विचार क्या है? विचार बहुत छोटा सा है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ विचार है कि जो जैसा है उसे वैसा मानना, यह विचार है। आग्रह नहीं करना, जो वस्तु जैसी है उसे ठीक वैसा ही स्वीकार कर लेना, निराग्रह होकर के स्वीकार कर लेना, इससे अच्छा कोई विचार हो सकता है? जीव का स्वरूप जैसा है उसमें अजीब का गड्ढमड्ढ करके मत करना, जीव का जीव पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इन तैनारी है जीव चाल। बस बाकी सब द्रव्यों की चाल अलग है, जीव की चाल अलग है, ये विचार हमारा एकदम श्रेष्ठ विचार है। जो जैसा है उसको वैसा, फैक्ट्स हैं तो फैक्ट्स को एज इट इज जो है स्वीकार कर लेना चाहिए। यहां से शुरुआत होती है धर्म की, अध्यात्म की। और किसी भी आप आचरण की बात जब भी पढ़ रहे हो, जैसे अपन आचरण की बात कर रहे हैं, पर ध्यान रखिएगा उस आचरण के पीछे कोई ना कोई श्रेष्ठ विचार छिपा हुआ है, वो उस आचरण में से ही प्रकट होने वाला है। अभी जैसे हमारे पास बहुत अच्छे विचार हैं मान लीजिए, वो हमारा आचरण नहीं बने हैं इसलिए वो हमारे नहीं कहलाएंगे, वो सबधार हैं। अब उन विचारों को हम अपने आचरण में ले आए और फिर वो विचार हमारे अपने आचरण में से प्रकट होने लगे, तब समझना कि ये अनुभूतियों के द्वारा या अनुभूति के द्वारा प्राप्त हुआ ये विचार ही हमारा अपना ओरिजिनल विचार है। वहां तक पहुंचना है अपने लिए वास्तव में देखा जाए। जब भी कोई आचरण की बात आए तब ये ध्यान रखना कि हमें कहां पहुंचना है। जिस वेद विज्ञान को लेकर के हम आगे बढ़े हैं उसी वेद विज्ञान को अपने भीतर अनुभव करना है। ये जानना बहुत आसान है, ये विचार देना बहुत आसान है कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है, लेकिन इस जीव और पुद्गल के अलग होने वाले विचार को मैं अपने आचरण में ला करके और अनुभव करूं, बस इतना ही, यहां से होगी धर्म की शुरुआत। हम लोग अनुभव से धर्म की शुरुआत नहीं करते। रोजमर्रा के जीवन में कैसे आए अध्यात्म, तो अध्यात्म तो अपने आप रोज आता है। रोज कोई ना कोई चीज हमें कोई ना कोई संदेश दे करके जाती, हमारा अनुभव हमें खुद संदेश देता है। कांच का सामान लाए थे टूट के गिर गया, हमें संदेश दे रहा है कि नहीं कि यहां सब कुछ अनित्य है, यहां क्षणभंगुर है, उसके पीछे कुछ छुपा हुआ है। लेकिन उस क्षणभंगुर के बाद भी उस कांच के गिलास को भी अगर आप फिर से रीप्रोसेस करें तो फिर कांच का गिलास बन सकता है। वो मटेरियल तो वहां पर एग्जिस्ट करेगा पर वो फॉर्म चेंज हो गया, वो टूटा है। इसलिए पर्याय के टूट जाने पर, विलग हो जाने पर रोने धोने की बात नहीं है, उसके पीछे छुपी हुई आत्म तत्व को देख लो। ये गणित हम कांच पर तो ठीक से लगा लेते हैं लेकिन ये गणित अपने जीवन के ऊपर ठीक से नहीं लगा पाते, और है उतना सही। रोज हम अनुभव करते, रोज कोई ना कोई मरने की खबर किसी की सुनाई पड़ती है, रोज कोई ना कोई रोग शोक व्याधि दुख व्यक्ति को होते हैं, संसार दुखमय है। ये अपने अनुभव से चाहे व्यक्ति तो रोज सीख सकता है, लेकिन बस मजा यही है अपन लोगों के साथ कि अपने पास बहुत बढ़िया बढ़िया विचार हैं, कोई पूछे अपन से तो फौरन बता देते हैं, लेकिन वे विचार अपने आचरण में नहीं आ पाते हैं। इसलिए हमें वैसी जैसी अनुभूति उन विचारों के आने पर होनी चाहिए, वैसी अनुभूति नहीं होती। अनुभूति नहीं होती तो विचारों को पकड़ करके हम वाद विवाद करना शुरू कर देते हैं। विचार अगर अनुभूति तक नहीं पहुंचे तो मानिएगा वे सिर्फ उलझन पैदा करेंगे, और अगर वे विचार आचरण के साथ समन्वित हो जाएं तब वे जो अनुभव देंगे वो अनुभव हमारे लिए वास्तविक होगा और वही हमारे जीवन की उपलब्धि होगी। विचार उपलब्धि नहीं है, अकेला आचरण भी उपलब्धि नहीं है, अनुभूति हमारे जीवन की उपलब्धि। हमने क्या अनुभव किया पूरे जीवन, और जैसा अनुभव करते हैं वैसा हम अपने आगे के जीवन के लिए बांध लेते हैं। आप सुख दुख का अनुभव करेंगे तो आप सुख दुख बांधेंगे। दुख शोक ताबा क्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य असद्वेद्यस्य, ये सूत्र तो लिखे हुए हैं लेकिन कैसे लिखे हैं? अगर आप ज्यादा दुख शोक आतप या कि ये सब चीजें फील करेंगे तो अल्टीमेटली आपको असाता वेदनी का बंध होने वाला। आप जैसा फील करेंगे वैसा आप आगे के लिए डिपॉजिट करेंगे। और मुझे करना क्या है? मुझे अपनी फीलिंग संभालनी, मुझे अपने विचार संभालना है, ये तो हम गजल भी कह देते हैं। मुझे अपना आचरण संभालना है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है कि आचरण भी संभालना है विचार भी संभालना है, लेकिन आचरण विचार संभल जाने के बाद भी मेरे भाव संभले हैं कि नहीं संभले? आचरण बाहर से संभल जाता है, भीतर से भाव नहीं संभल पाते हैं। विचार बहुत अच्छे मन के द्वारा आते हैं लेकिन आचरण नहीं संभल पाता है, और अनुभूति भी हमारी ठीक नहीं हो पाती है। अच्छे विचार वाला भी भाव गंदे कर रहा है, अच्छा आचरण करने वाला भी अपने भाव गंदे कर रहा है, तो मैं सोचता हूं कि आखिर बात क्या है, गड़बड़ कहां हो रही है? गड़बड़ यही हो रही है कि हमारे पास विचार और आचरण दोनों ही हमारी अनुभूति को सुधार नहीं पा रहे हैं। कोशिश करिएगा, धर्म की शुरुआत तो तभी होगी जब हमारा आचरण और हमारे विचार हमारे परिणामों को सुधार लें। परिणाम निर्ममता आवे, एक ही चीज जब भी मैं आपसे कहूंगा, किसी भी ढंग से कहूं, सैकड़ों तरह से कह चुका हूंगा मैं जब जब बैठता हूं तो, लेकिन आएगी वहीं पर बात लौट करके घूम फिर करके, किसी भी तरह आप कह लीजिएगा कि भावों की निर्ममता। बस इसीलिए धर्म पूरा जैन धर्म भावात्मक है, भावात्मक कह लीजिए या अनुभूति परक है। जो कुछ भी हम विचार करें, जो कुछ भी आचरण करें, फील करें कि हम अपने परिणामों को निर्मल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये जो अपन पढ़ रहे हैं श्रावक की विभिन्न स्थितियां हैं, वो क्या है आखिर, वो श्रावक के विकास की श्रेणियां हैं जो अपन आज पढ़ेंगे। बहुत सुनते होंगे आप प्रतिमाएं, तो मैं जब छोटा था तो उस समय चर्चा चलती थी घर में, तो हमने कहा कि फलाने ने दो प्रतिमा ले ली। अब फलाने ने दो प्रतिमा ले ली तो हम जैसे समझते कि अपन कल मंदिर जी हैं, सो देख आए कौन कौन नई आई है प्रतिमा, दो लेंगे हमने तो बाकी होंगे कहां भी। फिर बाद बाद में समझ में आया कि वो वाली प्रतिमा नहीं है, वो प्रतिमाएं तो हम बाहर रखते हैं, लेकिन जैसी प्रतिमाएं हम बाहर देखते हैं वैसी अपने भीतर गढ़ना शुरू करते हैं, तब शुरू होती जीवन में प्रतिमा। वो जैसी भगवान की प्रतिमा है वैसी मेरे भीतर भी प्रतिमा छुपी हुई है। मैं ये बाहर से प्रतिमाएं लेकर के अपने भीतर की प्रतिमा को उकेरूं, जो बाहर का कचरा है उसको हटा दूं, तराश दूं, कलाकार की तरह जैसे कलाकार छेनी हथौड़ा से पत्थर में से तराशता है और प्रतिमा निकल आती है। ये श्रावक की प्रतिमाएं श्रावक को उस वितराग प्रतिमा तक पहुंचाने के लिए सहयोगी हैं, इसलिए ये आत्म विकास की श्रेणियां हैं। प्रतिमा का सीधा अर्थ क्या है, श्रावक के आत्म विकास की श्रेणियां, क्लासेस। जैसे बेटा पहली में पहुंच गया केजी वेजी पढ़ के, वन में, टू में, थ्री में, इसी तरह तो ये है कि केजी अपन भी पढ़ते हैं। पाक्षिक श्रावक क्या है, वो केजी है, केजी लोअर केजी अपर केजी, पाक्षिक श्रावक। और नैष्ठिक हो जाता है तो फिर वो वन टू थ्री इस तरह से, नैष्ठिक श्रावक जो है वो प्रतिमाधारी होता है, पाक्षिक श्रावक अपने धर्म का पक्ष लेता है। पक्ष का मतलब है आठ मूल गुण लेना, यही पक्ष है। भगवान का पक्ष क्या है, कहते ना कि ये उनके पक्ष में है, ये इनके पक्ष में है, ये विपक्ष में है, तो पक्ष क्या है भगवान का, कहते हैं यही कि आठ मूल गुण धारण करो, तीन मकार पांच उदंबर फलों का त्याग करो और या कि पांचों व्रत ग्रहण करो, यही पक्ष है भगवान का। जो इसे ग्रहण कर लेता है वो पाक्षिक श्रावक कहलाता है, और जब और अधिक निष्ठा हो जाती है तब वो ये प्रतिमाएं धारण करता है, तब उसे नैष्ठिक श्रावक कहते हैं। और ऐसी 11 कक्षाएं पहुंच जाता है, उसके बाद साधु बन जाता है, श्रमण बन जाता है, धीरे धीरे अभ्यास करता है। आत्म विकास के अभ्यास का मतलब क्या हुआ, समता का अभ्यास और कुछ नहीं। श्रावक संतोष का अभ्यास करता है पाक्षिक अवस्था में, मैं तो ऐसा सोचता हूं, वो संतोष की साधना करता है जब वो पाक्षिक होता है। नैष्ठिक होता है तो फिर धीरे धीरे समता की साधना करना शुरू करता है, कैसे मेरे जीवन में साधु के समान समता आए। और फिर उसके बाद एक दिन वो उन कक्षाओं से पार हो जाता है और साधु बन जाता। हर श्रावक को अपने जीवन में भैया पैसा नहीं लगता, फोकट है, भावना तो आनी चाहिए कि नहीं बन पाए, मगर आखिरी समय तक महाव्रती बने, मुनि बने, क्योंकि मार्ग तो एक ही है, मार्ग दो नहीं है। श्रावक और साधु के आचरण अलग अलग हैं, लेकिन मार्ग तो एक ही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्गानी नहीं, बहुत सारे मोक्ष के मार्ग हैं, ऐसा नहीं लिखा, मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तीनों मिलकर के एक मोक्ष का मार्ग है। अब कोई व्यक्ति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का आंशिक रूप से पालन करता है, कोई पूर्ण रूप से पालन करता है, लेकिन जो आंशिक रूप से पालन करता है उसको एक ना एक दिन पूर्ण रूप से पालन करना पड़ेगा, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए श्रावक भी भावना बनाता है कि मुझे भी महाव्रत और संता रूप जो श्रमण है, स्थिति है, वहां तक पहुंचूं। इसलिए ये 11 प्रतिमाएं लेता है। और प्रतिमाओं के साथ बड़ा मजा है कि ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपने पहली कक्षा पास कर ली तो अब दूसरी में पहली का कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं चलेगा। यहां पर आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसा नहीं। यहां पर अगर दूसरी प्रतिमा ली है तो फिर पहली वाली प्रतिमा का भी सारा कुछ करना पड़ेगा और दूसरी का तो करना ही पड़ेगा। और तीसरी ली है तो पहली दूसरी दोनों प्रतिमाओं का पालन भी करना और तीसरी का जो एडिशनल है वो भी पालन करना। जैसे कि कोई आचार्य बनता है, कोई उपाध्याय बनता है, तो उसको साधु का आचरण तो पूरा करना ही है और उसके बाद आचार्य के 36 मूलों का पालन अलग से करना है। ऐसा है वो, कोई ये नहीं समझना कि पहले वाला छूट गया है और फिर बाद वाला आ गया है। नहीं, प्रतिमाओं में कहेंगे इसमें स्वगुणा पूर्व गुण ही है साहब, अपने गुणों के जो नई प्रतिमा ली जा रही दूसरी ली जा रही तो उसके अपने गुण तो हैं लेकिन पूर्व गुण ही है साहब, पूर्व की प्रतिमा के गुणों के साथ वो चलती है। इस तरह से एक 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 स्टेप आगे बढ़ता चला जाता, बहुत आसान है। अगर 11 प्रतिमाएं कोई कहे 5 मिनट में तो 5 मिनट में कह सकते हैं आप 12 प्रतिमाओं का स्वरूप कह सकते हैं। थोड़ा सा स्टडी करें तो बहुत आसान होगा। मैं 5 मिनट में बताता हूं आपको 11 प्रतिमाएं क्या करता है श्रावक। शुरू में भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा है, उसने 5 अंगवत ले लिए। अब एक दिन उसके मन में आता है कि इतने से क्या चलने वाला, भगवान का पक्ष तो लेता हूं, भगवान के प्रति मेरी निष्ठा तो तब कहलाएगी जब उनने जैसा आचरण बताया है वैसा आचरण करूं, तो आचरण करना शुरू कर देता, अभक्ष्य चीजों का पूरा त्याग कर देता, मर्यादा पूर्वक भोजन शुरू कर देता है। बहुत लिमिटेड हो गया, मर्यादा पूर्वक भोजन करने लगना यानी बड़ी लिमिटेशंस हो गई। संसार बहुत सिमट जाता है, छोटा सा हो जाता है। आप अगर गौर से देखें प्रति व्यक्ति का संसार बहुत छोटा सा सिमटता चला जाता है। अब उतना कम हो गया, कहता कि अभी तो थोड़ा सा गड़बड़ है, समय का मैं कुछ करने का है नहीं हिसाब किताब, तो क्या करूं, और सब घूमता फिरता भी रहता हूं, अकेले 5 अंग व्रत है उससे क्या आने वाला। तो गुण व्रत भी ले लेता है, शिक्षा व्रत भी ले लेता है और सीमा बना लेता है। हो गया, दूसरी प्रतिमा आ गई उसके जीवन में। कहता 12 व्रत तो ले लिए हमने, दूसरी प्रतिमा भी है, लेकिन ये सामायिक का निश्चित नहीं हो पाता है कि सुबह भी देर हो जाती शाम को भी देर हो जाती, ये नहीं चलेगा भाई। अब तो जो है 3 संध्या में सामायिक करेंगे, निश्चित समय पर करेंगे, चलो तीसरी प्रतिमा ले लो, तीनों संध्याओं पर सामायिक नियम से करेंगे। अभी तो ऐसा भी है कि सामायिक अकेले का समय 3 घंटे तो होता ही है, जरा थोड़ा ज्यादा समय मिले तो अच्छा रहे, तो क्या करो, तो अष्टमी चतुर्दशी के दिन जो है उपवास करो और अष्टमी के एक दिन पहले और बाद में भी एकासन करो, प्रोषद उपवास का नियम ले लो। चौथी प्रतिमा आ गई, प्रोषद उपवास का नियम ले लिया, नियम से करेंगे, और कोई बड़ी सी चीज नहीं है। और फिर अब तो कहीं भी खड़े होकर कुछ भी खा लेते थे, केला खरीदा और खा लिया, अरे ये नहीं चलेगा, जब तक कोई चीज गर्म नहीं हो जाएगी या कि प्रासुक नहीं हो जाएगी तब तक नहीं खाऊंगा। पांचवी प्रतिमा ले ली, सचित त्याग नाम की प्रतिमा ली। अब ये तो ठीक है, अपन ने रात में छोड़ दिया है, लेकिन अब बच्चों को खिलाना पड़ता है, मेहमान आए तो उनको खिलाना पड़ता, भैया ये कब तक चलेगा, अब इतनी जिंदगी निकल गई हमारी, अब तुम लोग बड़े हो गए तुम संभालो, अब तो ना हम रात में किसी को खिलाएंगे ना हम खाएंगे, कोई आएगा तो उसका समर्थन भी नहीं करेंगे। छठी प्रतिमा हो गई, रात्रि भोजन त्यागना। और अभी तक तो हमने जिससे विवाह किया था उसके साथ हमारा संबंध था, लेकिन अब उसके साथ भी हमारा संबंध उतना ही रखेंगे, हम बातचीत करना है, अपना धर्म ध्यान करना, धर्म ध्यान तक संबंध रखेंगे और हमारा उससे कोई संबंध नहीं रहेगा, भाई बहन की तरह रहना शुरू कर दिया है। ब्रह्मचर्य प्रतिमा हो गई, सातवीं प्रतिमा हो गई। और कहां तक हम अब कमाएं, सब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब तो हम कमाना धमाना भी छोड़ते हैं, व्यापार व्यापार छोड़ते हैं, बेटे तुम संभालो चाबी अभी सब तुम्हारे जुम्मे। आठवीं प्रतिमा हो गई, आरंभ त्याग कर दिया और बहुत सारा परिग्रह रख रखा था, उससे तो काम, उससे कम से काम चल रहा है। हमने जो है परिग्रह का भी त्याग किया, उतने रख लिया जितने अपने लायक था, पूजा के बर्तन रख लिए हैं, पूजा की सामग्री रख ली, थोड़ा सा दान पुण्य करने के लिए रख लिया, बाकी सब परिग्रह का त्याग कर दिया। और अब जो है मन होता है कि अभी तक तो परिग्रह अपन ने तो त्याग कर दिया था, पर बेटा रखे रहता था और पूछता था कि दुकान कैसी चलानी है और ये कैसा किया जाता, तो सब कुछ कहते थे और अपने भोजन वोजन की भी कह देते कि भैया कल ऐसा भोजन करेंगे, अब तो जो है अनुमति देना बंद कर दिया। दसवीं प्रतिमा हो गई, अनुमति त्याग नाम की प्रतिमा हो गई। और फिर एक दिन लगा कि अब कब तक घर में रुके रहेंगे, अब तो ग्रह तो मुनिवन मित्वा गुरु उपकंठे प्रतानि परिग्रह्य, अब तो घर से निकल करके ग्रह का त्याग करके किसी गुरु के चरणों में और श्रावक के 11 व्रतों का पालन करूंगा, 11वीं प्रतिमा का उद्दिष्ट त्याग, अब तो अपने लिए निमंत्रण भी स्वीकार नहीं करूंगा। अभी तो घर में था तो बेटे बुला लेते थे कि जिमने का समय हो गया, पिताजी तो जिमने चले जाता था, या किसी और ने कहा कि हमारे यहां भोजन कर दीजिए तो कर लेता था, अब ऐसे नहीं जाऊंगा, अब तो जहां मुनि महाराज जाएंगे उन्हीं के पीछे पीछे चले जाऊंगा और जहां वो आहार लेंगे वहीं पर मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि 5 प्रकार की शुद्धि पूर्वक मैं भी भोजन ग्रहण कर लूंगा। हो गई 11वीं प्रतिमा। ऐसे देखिएगा कैसे क्रम क्रम से वो अपना संसार समेटता है। जैसे अपन कहते ना कि दुकान बढ़ा लो, दुकान बढ़ा लो मतलब अब संध्या हो गई भैया, बढ़ा लो कहते हैं, बंद कर लो नहीं कहता कोई, बढ़ा लो कहता, बंद तो हो नहीं तो हमेशा के लिए शब्दों का उपयोग भी कैसा करते हैं, दुकान बढ़ा लो मतलब समेट लो अब शाम होने को है। इसी तरह से अपने आत्म विकास की तरफ बढ़ो मतलब संसार अपने आप घटता चला जाएगा। संसार को घटाने का अगर कोई उपाय है तो एक ही उपाय है कि अपने आत्मा की तरफ अपनी रुचि अधिक बढ़ जाए, संसार अपने आप पीछे छूट जाता है। संसार को उठा के उससे घृणा करके उसे कहीं फेंकने नहीं जाना है, और फेंका भी नहीं जा सकता, वहीं रहना पड़ेगा, लेकिन अपने को उससे जो है हटाते चले जाना। शावक भी ऐसा प्रयास करता है। ये थोड़ा सा मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि आपके भीतर ये विश्वास तो जागृत होना चाहिए कि हम भी कर सकते हैं। ये सारा जो है मुनि महाराज के मत्थे मत नहीं है, ये सारा काम कि भी करें सब सीधा सीधा हमारा कहने का ही, श्रावक को भी करना चाहिए। श्रावक भी इतना कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर पाते हैं, जब श्रावक कर सकता है हम क्यों नहीं श्रावक बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। ऐसा अपने भीतर एक आत्मविश्वास पैदा करिएगा। जीवन बहुत दुर्लभता से मिला है। हम लोग जब भी बैठते हैं तो एक ही मेरे दिमाग में कई बार ये चीज आती है। कल ही एक व्यक्ति पूछ रहे थे कि महाराज जी कितने भाव मिलते हैं लगातार मनुष्य के, 48 मिल सकते हैं, और महाराज अगर जो आखिरी भाव तो हमने कभी ये तो बहुत अच्छी सोची आपने, आप ही ने कह रही कि अगर जो आखिरी भाव तो क्या करेंगे, तो फिर नरक निबोध में जाना पड़ेगा, निबोध पर्याय प्राप्त हो। अगर ये 10 पर्याय का आखिरी भाव हुआ तो जाओगे कहां, निबोध में जाना पड़ेगा। 10 पर्याय का 2000 सागर का काल पूरा हो गया मान लो, और जी आखिरी भाव है तो क्या मिलेगा, 10 पर्याय थोड़ी मिलेगी, वो तो मिल चुकी 2000 सागर के लिए मिलती है, फिर अनंत काल के लिए निबोध में जाना, वहां तो पाप की प्रचुरता है, कब निकलेंगे कुछ कह नहीं सकते, केवल भगवान जाने। कहते निबोध से निकलने वालों जीवों के क्या परिणाम होते, कहते कोई नहीं जानता, केवल जानते हैं। कैसे निकल गो, निकल गो, अब नहीं कह सकते कैसे निकल। ऐसा ही हमें ये त्रस पर्याय प्राप्त होती है। त्रस पर्याय में सर्वोत्कृष्ट पर्याय, त्रस में भी 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री, और उसमें संगी 5 इंद्री, और मनुष्य, और मनुष्य भी मलेच्छ खंड के मनुष्य नहीं, आरीखंड के मनुष्य, और आरीखंड के ऐसे भी नहीं कि कलकत्ता में पैदा हो गए हों कि जहां फुर्सत लो नहीं है, होगी, हम ये नहीं कह रहे कलकत्ता में भी लोग होंगे उनको फुर्सत, लेकिन महानगर में पैदा हुए होंगे तो उतनी फुर्सत नहीं मिलेगी, और जितनी छोटी उसमें जितनी ऐसी जगह में जहां की धर्म की बहुत अधिकता हो वहां पैदा हुए हो तब तो फिर सौभाग्य क्या कहना, अपन ने कोई पुराना बहुत बड़ा पुण्य अर्जित किया होगा, ख्याल नहीं आता, कोई बता देता तो बहुत अच्छा रहता, फिर वैसे ही कर लेते एक बार, लेकिन समझ में नहीं आता कि आसानी से निकल रहा है, लेकिन कितनी मुश्किल से अपन ने ये सब चीजें पाने के लिए कितना कठिन परिश्रम किया होगा, ये बात बार बार दिमाग में आती आनी चाहिए अपन को कि ऐसे ही चला जा रहा है, मैंने क्या करा होगा जिससे मुझे ये सब मिला। अगर इतना ध्यान आ जावे तो शायद हो सकता है कि आगे भी हमें पर्याय मिले और अपने कल्याण के लिए कोई उपाय अपन कर सकें। इस जीवन में तो करिए ही, आगे के जीवन में भी पर्याय मिले ऐसी भावना भाई, ये उसी के लिए ये सब व्रत नियम संयम है। अपन पढ़ते हैं कि कैसे श्रावक के विकास की कक्षाएं और किस तरह से व्यक्ति अपना विकास कर सकता है, एक श्रावक रह करके भी अपना विकास आत्मा का कर सकता, परिणामों को निर्मल बना सकता है, उसी के लिए ये प्रतिमाएं हैं। श्रावक पदानि देवई रेखा बसु देशितानि येषु खलु, येषितानि येषु खलु सगुणाः पूर्वगुणैः सह सहतिष्ठन्ते क्रम विवृद्धा तन्ते क्रम विवृद्ध। मैं थोड़ा सा गलत पढ़ गया था, सह नहीं लगाना, सह तो अपन यहां पढ़ चुके, स्वगुणा पूर्व गुणैः सह संतिष्ठन्ते क्रम विवृद्धा। क्या अर्थ हुआ, देवैः एकादश श्रावक पदानि देशितानि, भगवान के द्वारा श्रावक की कितनी प्रतिमाएं कही गई, कहते एक आदर्श अर्थात 11 कही गई, उसमें क्या है, उसमें स्वगुणा पूर्व गुण सह क्रम विरवृद्धा संतिष्ठन्ते, जो जो अपनी अपनी प्रतिमा के व्रत हैं वे पूर्व पूर्व की प्रतिमा के साथ क्रम क्रम से वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं। यही अर्थ इसका निकला, गाथा का श्लोक का अर्थ क्या हुआ कि हम अगर एक प्रतिमा लेते हैं तो उस प्रतिमा के साथ साथ पिछली वाली जो प्रतिमा हम छोड़ के आ गए हैं, आगे बढ़ गए हैं, तो वो उसके साथ है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि पहली वाली प्रतिमा के साथ में क्या है। सीधा सा प्रश्न है, पहली प्रतिमा के पहले तो कोई प्रतिमा थी नहीं, तो कहते पहली प्रतिमा के पहले आठ मूल गुण तो थे, पाक्षिक श्रावक तो थे, उसके बिना कैसे काम बनेगा। वो छोटे नहीं है, पहली प्रतिमा में वो सब शामिल है। अब पहली प्रतिमा का क्या स्वरूप है ये बताते हैं। बहुत मैंने सबसे आसान स्वरूप मेरे ख्याल से और एकदम स्टैंडर्डाइज्ड 2000 साल पुराना तो ये श्रावकाचार है, सबसे श्रेष्ठ माना गया। इसके लिए 35 श्रावकाचार हैं। श्रावकों के लिए देखो तो आप लोगों का पलड़ा भारी है, अपने लिए सिर्फ एक ही मूलाचार, ये कई किताबें मूलाचार की, और आपके लिए 35 श्रावकाचार। क्यों? क्योंकि अलग अलग समयों में श्रावक के लिए अलग अलग डायरेक्शन देना जरूरी हो गया। अब पहले थोड़ी कोई ब्रेड बनाता था, तब किताब में थोड़ी लिखा मिलेगा कि ब्रेड का भी त्याग करना चाहिए, उसमें तो मर्यादा लिखी है। फिर अब आज वर्तमान में तो ये भी लिखना पड़ेगा कि ब्रेड का भी त्याग करो, बिस्किट का भी त्याग करो, क्योंकि सब में गड़बड़ हड़बड़ मिल रही। अब उनको ये थोड़ी मालूम था कि गाय के दूध की जगह पर डिब्बा को दूध पियन लाओ, तो उनने नहीं लिखा उसमें कि अब कोई श्रावकाचार नया बना है तो उसमें लिखना पड़ेगा कि डिब्बे का दूध नहीं पियो। तो ऐसा करके क्या हुआ, जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो श्रावक के लिए अहिंसा व्रत की सुरक्षा के लिए बहुत सारी चीजें जो हिंसक थी, पहले बहुत चलता था कि ये नहीं खाना, चमड़े में रखी हुई रहती, चाय वगैरह भी पहले चमड़े के बकेट्स वगैरह बनते थे, उसमें पैक की जाती थी, 6 महीने तक जो है डार्क रूम में रखा जाता था। प्रोसीजर ओल्ड प्रोसीजर था, अब तो खैर केमिकल्स वगैरह से उसको प्रोसेस करते हैं। जैसे शकर थी तो शुगर भी जो है पहले बूम चारकोल से साफ की जाती थी, अब तो सीधा ब्लीचिंग से उसको ब्लीच कर देते हैं, तो प्रोसीजर बदल गए। लेकिन जैसे जैसे हिंसा की चीजें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे श्रावकों के लिए बताना पड़ेगा कि इनमें हिंसा होती इनसे ही बचो, इनमें हिंसा होती इनसे ही बचो। और मुनि महाराज के लिए क्या 28 मूल गुण है, 28 का पालन करना पड़ेगा, उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं है। उसको तो चौथे काल में जैसे थे वैसे ही पंचम काल में है। पंचम काल अपन कह तो देते हैं कि पंचम काल है तो पंचम काल है, तो एक आध कम कर लो, 27 कर लो, ये तो नहीं, वे तो 28 ही रहेंगे। और श्रावक के 5 अनुव्रत हैं तो 5 ही अनुव्रत रहेंगे, संख्या में फर्क नहीं होगा। अब अनुव्रतों को कैसे पालन करना है, श्रावक बन की अवस्था में भी थोड़ी बहुत शिथिलताएं आएंगी, तो उन सबको अलग अलग श्रावकाचारों में अलग अलग ढंग से प्ररूपित कर दिया। ये सबसे स्टैंडर्डाइज जो पहली प्रतिमा के लिए दिया है उसको अपन देखें कैसा स्वरूप है। तो लेने का मन बनाइएगा, जब आप पढ़ रहे हैं तो लेने का मन भी बनाइए। हालांकि मैंने अभी तक किसी को प्रतिमा दी नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत आसान भी है और मुश्किल भी। आसान तब है जबकि आपने अपने बच्चों को संस्कार दे दिए हों, तो आपके लिए बहुत आसान है। आपके बेटे अगर संस्कारवान होंगे तो वो कहेंगे आप तो ले लो, हम निभाएंगे आपकी प्रतिमा, आखिरी समय हम कुएं से पानी भर के ले आएंगे और हम चक्की का आटा आपको देंगे। आप क्यों निश्चिंत, आप क्यों नहीं लेते हैं, हम आपको कहीं हॉस्पिटलाइज नहीं करेंगे, हम आपको सलाइन विलाइन लगवाएंगे नहीं जब आप बीमार हो जाएंगे, आप निश्चिंतता से ले लीजिएगा। ऐसे अगर आपके पास बेटे हैं तो बहू है तब तो मानिएगा कि आप आसानी से ले सकते, वरना आप ले तो लेंगे पर आखिरी समय क्या करिएगा। बेटे को तो सेवा करनी है, सुबह कहेगा कि चलो भर्ती करवा दो, चाहे जो कहो खुआओ, शुद्धि अशुद्धि का कोई विचार ही नहीं। डॉक्टर कह रहा है कि ये टैबलेट खानी है सुखानी है, और ये पीना है पीने की दवाई से ये पीना, और ये इंजेक्शन देना, उसको तो वो ही करेगा वो, अगर उसके संस्कार नहीं है तो। तब फिर प्रतिमाधारी के लिए दिक्कत होती, जीवन भर तो प्रतिमा पालन कर सकत भैया, लेकिन आखिरी समय प्रतिमा का पालन बहुत, जब अपने हाथ पांव नहीं चलत जब तो बहुत मुश्किल, कौन से पानी की केवे वो, कौन से मर्यादा के भोजन की केवे, और वो मुख्य है, उसके बिना धर्म ध्यान होता नहीं। जब तक नहीं पहुंच जाएगा, जब तक धर्म ध्यान अच्छे लोग किसी से भी नहीं होता। ये तो पंचम काल में ये जरूर लिखा है कि ये अन्न का कीड़ा है, इसको अगर नहीं मिले तो ये काम करना बंद कर दे, ढीला हो जाता मामला, तो वो जरूरी है और उसी की मर्यादा करना है तब प्रतिमा चल पाती। पर फिर भी साहस तो करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास के तौर पर तो प्रतिमा ले लेनी चाहिए कि हम जो आचरण है उसका अभ्यास करेंगे, जितना बनेगा उतना अभ्यास करेंगे। ऐसा इसका स्वरूप समझ के मन बनाइएगा लेने का। ये कब लीजिएगा नहीं तो सवाल ये है, पूरा जिंदगी ही निकल जाएगी, अभ्यास तो करना ही चाहिए। सम्यग दर्शन शुद्धः संसार शरीर भोग निर्विन्नः पंच गुरु चरण शरणो दर्शनिकस्तत्त्वपथ ग्रहीयः। दार्शनिक या दर्शनिक, देखो पहली प्रतिमा वाले को दार्शनिक श्रावक कहते हैं, दूसरी प्रतिमा वाला व्रती कहलाएगा, पहली प्रतिमा वाला दार्शनिक है अर्थात जो भगवान ने विचार दिए हैं उन विचारों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसको दार्शनिक कह दिया। दार्शनिक का मतलब यहां पर फिलोसफर नहीं समझना, नहीं तो आप समझो कि दार्शनिक मतलब फिलोसफर। वैसे वास्तव में फिलोसफर वही है जो विचारों को अपने जीवन में लाने के लिए प्रयास कर रहा है, सच्चा तो वही है, अकेली विचारों की चर्चा करने वाला सच्चा नहीं है, उनको अपने जीवन में अर्चा करने वाला, उनके अपने जीवन में लाने वाला आचरण में। कहते हैं जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है और संसार शरीर और भोगों से विरक्त हो गया है, तीनों का स्वरूप दिया। कभी वैराग्य भावना पढ़ते हो तो मालूम होगा संसार शरीर और भोग इन तीनों का स्वरूप वर्णन करते हैं, और फिर निर्ग्रंथ वज्रनाभि निर्ग्रंथ, और फिर दीप मुनि महाराज उनको बताते हैं कि संसार का स्वरूप कैसा है, इस शरीर का स्वरूप कैसा है और भोगों का स्वरूप कैसा है, तीनों का स्वरूप बताते हैं। संसार ऐसा है कि यहां तो जन्म मरण लगा ही हुआ है, जन्म मरण का दुख यहां पर हर व्यक्ति को झेलना पड़ता है, वो एक इंद्री से लेकर के और संगी पंचेंद्री तक सबके लिए संसार नाम ही आवागमन का है, और अगर हम इस संसार के इस आवागमन से बचना चाहते हैं तो इसका स्वरूप समझ ले, और शरीर से आसक्ति छोड़ना चाहते तो शरीर का स्वभाव, वो लाइन एकदम याद नहीं आती, दुर्जन देह स्वभाव है, कहते जैसे जैसे दुर्जन है को स्वभाव है ऐसे ही इस देह का स्वभाव है, जे अपने मन की करती है और हमें अपने मन का नहीं करने देती, जी इसका स्वभाव। दुर्जन का क्या स्वभाव है, सज्जन कछु करे तो उसमें तो दोष निकालेगा, वो कहेगा कि मैं जैसा हूं वैसा तुम करो, ये दुर्जन। दुर्जन की परिभाषा मालूम, जो सज्जन के साथ भी बुरा व्यवहार करे वो दुर्जन, और जो दुर्जन के साथ भी अच्छो व्यवहार करे वो सज्जन। इतनी सी परिभाषा है और कुछ बड़ी परिभाषा नहीं। कहती जी हमारी आत्मा के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करता इसलिए ये दुर्जन है, और हम सज्जन हैं तो हम इसके साथ अच्छो व्यवहार करते, कि भैया देखो समारेगा क्योंकि इसी के द्वारा धर्म ध्यान होगा, बस इतने इससे अच्छा व्यवहार करना कि इससे काम लेते रहना, और इससे ज्यादा इससे और व्यवहार नहीं बनाना, इससे व्यवहार बना लिया तो जी आराम तलवी वाला काम है, इससे व्यवहार इतने ही रखना कि इससे हम अपनी तपस्या करें, काना पोणा पड़ा हाथ ज्यों चूसे तो रोपे और फले धर्म जो उत्तम धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। ये तो काना पोणा है, बानर है, जैसे उसको चूसो तो दांत दांत टूट जाते, बड़ी कड़ी रहती नीचे की जहां से जड़ में उगत गन्ना, तो उसके नीचे वाली वो चूसो तो दांत में से खून निकल आएगा और उसमें रस वस कुछ मिलेगा ही नहीं, तो लेकिन उसी को अगर आप उसको तोड़ तोड़ के पीस उसके बना के बो दो तो नए गन्ना निकल आएंगे रसदार। इसी तरह ये है कि इसको अगर भोग विलास में लगा दो तो सिवाय रोने के कुछ नहीं मिलने वाला, दांत टूट जाएंगे आखिरी में। है? कितना खाओगे आप, अच्छी चना खाए वारे तक की आखिरी में जाए स्थिति हो के फिर बांट के खाने पर, तो ऐसे ही इसका शरीर का। कहते कि अगर इसको धर्म ध्यान में लगा दो तो इससे अनंत फल मिलने वाला है, ऐसा देह का स्वभाव कौन समझ सकता है, सम्यक दृष्टि है। तो कहते सम्यक दर्शन से शुद्ध है जिसका दृष्टिकोण स्पष्ट हो गया है, वो संसार को ठीक संसार की भांति देखता है, रस्ता पस्ता नहीं, शरीर को जैसा उसका स्वभाव वैसा देख करके उसमें रस्ता पतना पस्ता नहीं, और भोग विलास की जितनी सामग्री है वो मुझे कितना सुख दे पाती है इसका विचार तो करो। कर्म के आश्रित मिलती है और कर्म का ऐसा उदय आ जावे कि सामने रखी रहवे तो नहीं खा सकत, बिड़ला जी हैं पैसा वारे हैं, मनो जब बुखार हुए थे तब उनको मूंग की दाल तो उनको पीने पड़त के नहीं पीने पड़त, पानी वो को पीने पड़ेगा, कोई भी मान हो जावे उसको मूंग की दाल का पानी हो रही सो रहे आवर रसगुल्ला नहीं खा सकत। कर्म के उदय में ही हमें भोग उपभोग की सामग्री मिलती है, और कर्म का उदय होता है तो छिन भी जाती है, अरे ये कर्माश्रित है, ऐसी कर्माश्रित चीज के पीछे हम क्यों पड़े, जो हमारे आत्माश्रित है उसकी तरफ क्यों ना जाए, वो हमसे कभी नहीं छिनने वाली। ऐसा भोग उपभोग की सामग्री के बारे में विचार करें, कहते के ग्रहण करते समय तो लागे नीके, वो लाइन याद नहीं आती, भाव तो याद है उसका कि जब जब उनको ग्रहण करते भोगते हैं भोगों को तब तो नीके अर्थात अच्छे मालूम पड़ते हैं, और जब उनका फल मिलता है तो दुखदाई हो जाता है। बोई रसगुल्ला जो एक अच्छो लगत है वो लगातार 10-15-20 ठो खा लो फिर उसके बाद का हो। एक महाराज जी थे, देखो वो याद आ गई मुझे, उनका नाम तो याद नहीं है, उनकी एक आदत थी कड़ी खाने की आदत थी, उनको बहुत भाती थी वो कड़ी। कैसे करता है कोई भी साधक हो वो कैसे इन भोगों की तासीर समझ करके छोड़ता है ये बताना चाहता हूं। उनको बहुत आदत थी, उससे उनको क्या होता था कि आदत तो अपनी जगह है पर थोड़ी हंसी हो जाती थी उनकी, गए इनमें सबको जो छोड़ो मानो देखो तो कड़ी का इतना शौक इनके लिए, अगर कहूं मिल जावे तो वही वही खाएं। तो अभी दम के मन में आया कि जी है तो नहीं अच्छी आदत बुरी आदत है, कोई भी चीज हो किसी भी चीज की आसक्ति हो आखिरी समय तो वो बुरी कहलाएगी, भले ही भक्ष्य चीज है खाने योग्य है मगर आसक्ति क्यों। तो एक दिन उनके मन में आ गई कि आज तो इसका उपाय करेंगे, सो एक व्यक्ति को बुलाओ, कहने भैया अच्छी कड़ी बनाइयो। कहने महाराज तुम्हारी आदत गई ने, मनो मन उसने कहा कि इनकी आदत गई ने, अब तो कहते गई इनने कि अच्छी कड़ी बनाई आज तो एक आध दो बंजी उसने बनाई। श्रावक भी भोले भाले हुआ करते थे, सरलता थी कि कोई अगर कुछ कह रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ औचित्य तो होगा, मीन मेस नहीं निकालते थे ज्यादा, समझदार इतनी समझदारी पर्याप्त, और बना ली उनने और उन्हीं के पहुंच गए महाराज, और पानी आनी कचूनी कहला भाई उसी से शुरू करो। ठीक अब क्या करना चाहते महाराज, सो ले करके और पीना शुरू कर दिया, पूरी पीते गए जब तक पेट नहीं भरा, कहने हाँ पीते जाओ अब क्या होगा रिजल्ट क्या निकलेगा, बीमार 3 दिन तक बीमार, भोजन भी नहीं करो, उपास होगा 3 दिन को। लोगों ने कही कि महाराज जब आप सब समझत हो इतनी जानते हो, अब देखो एक दिन से निकाली और 3 दिन तक आपकी हालत खराब रही। कहने सुनो अब देखे है अब तो मान गो, अब ये कहो अब देखी तुमको घड़ी देखते ही साथ मैं उस तरफ हो जाने वाला, अब भोग लिया समझ में आ गया कि जी अब ये खाने योग्य नहीं, ऐसा किया था हमने, उनके जीवन का संस्मरण है ये कि इतनी सा ज्यादा खाली उसके प्रति इतनी अरुचि हो गई, जिस चीज के प्रति इतनी रुचि थी उसी के प्रति करे इसने क्या किया, देह को मिटा करके रख दिया, ये वही भोग सामग्री है। ऐसा अपने जीवन में स्वयं अनुभव करें, जितना आवश्यक है उतना ले लिया, उसी के पीछे 24 घंटे लगे हुए हैं इसमें क्या रखा है, ऐसा विचार करता है वो, विचार है उसका अभी पहली प्रतिमा वाला, ऐसा विचार करता है कि शरीर का क्या स्वभाव है भोगों का क्या स्वभाव है, ठीक है जितने थाली पे आ गए चिमा के अपने चुपचाप खा लो अब जो चाहिए, ऐसा नहीं करता, इतना तो निराग्रही हो जाता है पहली प्रतिमा में। संसार शरीर भोग से विरक्त है, इसका मतलब ये नहीं कहना कि उसने सब भोग सामग्री छोड़ दी या कि संसार ही छोड़ दिया हो और मुनि बन गया हो, ऐसा नहीं है, वो वहां रह के विचार करता है कि इन सब का स्वरूप ऐसा है मैं इनके प्रति अपना व्यवहार कैसा करूं, बस इतना ही विचार उसका। और कहती पंच गुरु चरण शरणों, और शरण कौन सी है, संसार शरण नहीं है, न देह शरण आए न भोग की सामग्री शरण आए, इन सबको मैं अभी तक शरण मानता था, अब तो जो है पंच गुरु चरण शरणों, पंच परमेष्टि की शरण ही मुझे है और किसी की नहीं है, ऐसा विचार करके तत्व पथक ग्रहिया कहते हैं 8 मूल गुणों को धारण कर लेता है। तत्व पथ ग्रहिया जो पथ जो पक्ष भगवान का है 8 मूल गुण और अभक्ष का भक्षण का त्याग, ये सब चीजें पहली प्रतिमा में मर्यादा का आ जाता, कह लो आप एक ही चीज के मर्यादा का भोजन, सारी क्रियाएं आत्मानुशासित होना शुरू हो जाती, खाना पीना उठना जागना सोना सब चीजें व्यवस्थित हो गई पहली प्रतिमा के साथ, ये मर्यादा जो है वो आ जाती है और उसके विचारों में बहुत परिवर्तन आ जाता है। इस तरह ये पहली प्रतिमा का स्वरूप हुआ, भाई इतना ही बन रखते हैं अपने जीवन में, इन व्रतों का स्वरूप समझ करके जितना जिससे बने उसको ग्रहण करना चाहिए। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की जय।
कल प्रकाश आया मुझे इसी स्थान पर होने जाएंगे विशेष
नग्न स्वरूप तुम्हाराग जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो अथवा वग शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो अर्ध निशा का सन्नाटा तव शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां शम की अभिनय स्वर मणिया हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम को पार के उतार वेखो